सभी को भावपूर्ण नमस्कार। सत्संग के आरंभ में गुरुदेव जी के परम पावन श्री चरणों पर अपना मस्तक रखेंगे। गुरुदेव जी के परम चरणों पर मस्तक रखते ही अपने मन की अवस्था कैसी है? ऐसे लगता है कि हमने अनजाने में ही अपना समस्त भार गुरुदेव जी पर सौंप दिया है, जिससे मन पर से सभी प्रकार के बोझ दूर हो गए हैं और अपना चित्त उनके दिव्य चरणों पर स्थिर हो गया है। श्री गुरु चरणों पर नतमस्तक होते ही अपने आप शरणागत भाव जागृत हो गया है और इसी शरणागत भाव से हम सभी श्री गुरु को आर्तता से पुकारेंगे। हम सभी उनके चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे और शरणागत भाव से श्री गुरु को आर्तता से पुकारेंगे। अपने हृदय में शरणागत भाव जो जागृत हुआ है वो वैसे ही जागृत रहे, ऐसे उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे। हे गुरुवर, आपके परम दिव्य श्री चरणों पर मस्तक रखने से हमारे ध्यान में आया कि आप ही परम परमेश्वर कर्ता कर्विता है। सब कुछ आपके ही हाथों में है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की डोर आपके ही हाथों में है गुरुवर। हे गुरुदेव जी, इस संपूर्ण विश्व को और विश्व के प्रत्येक घटक को आपके कारण ही प्रेरणा मिलती है। हे गुरुवर, आप ही तो संपूर्ण चराचर के स्वामी हैं तथा पालनहार हैं। हम साधकों के सर्वस्व आप ही हैं गुरुदेव जी। आज हम आपके श्री चरणों में ये याचना करते हैं कि हमारा ये मस्तक सदैव और सदैव आपके श्री चरणों में लीन रहे। ये मस्तक आपके श्री चरणों में झुककर हमारा कर्तापन आपके चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित होने दे। हे सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, सब कुछ आपके ही नियंत्रण में होने से आपकी कृपा से ही हमारा उद्धार होने वाला है, हमारे जीवन का कल्याण होने वाला है। हे गुरुदेव, इसका हमें सतत बांध रहने दे। हमें सतत चरणागत भाव हमारे अंतर में अनुभव होने दे। हे सर्व सामर्थ्यशाली गुरुदेव, ऐसी आपके चरणों में हम अत्यंत अत्यंत आर्तता से विनती करते हैं। प्रार्थना के माध्यम से हमारा रोम रोम अभी गुरु चरणों में लीन हो गया है और इसी शरणागत भाव से हम सभी दिव्य श्लोक के माध्यम से गुरुदेव जी का स्तुतिगान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन का सर्वोच्च ध्येय अर्थात आनंद प्राप्ति, और वो ध्येय प्राप्त करने के लिए हम इस जीवन प्रवास में विविध माध्यम ढूंढते हैं, विविध प्रकार से आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये आनंद हमें विविध रूपों में मिलता है। इसी प्रकार आनंद के क्षण देने के लिए एक नया तेजोमय पर्व अभी आ रहा है, तो ये पर्व कौन सा है? निश्चित ही सभी समझ गए होंगे कि वो दिव्य तेजोमय पर्व है दीपावली। इस दीपावली के उपलक्ष्य में भगवान हमें कौन सा दिव्य आनंद प्रदान करने वाले हैं? वो हम आज के इस दिव्य सत्संग में देखेंगे। दीपावली का त्योहार तमसोमा ज्योतिर्गमय, इसकी प्रत्यक्ष प्रचिति देने वाले प्रकाश का त्योहार है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्योहार अर्थात ज्योति पर्व। प्रकाश ज्ञान का स्वरूप है और तम अज्ञान का। प्रकाश अर्थात दीप ज्योति, दीपों का उत्सव अर्थात दीपावली। ये त्योहार प्रकाश पर्व है। हमारे इस भारत का नामकरण भी इस प्रकाश पर्व से ही हुआ है। भा अर्थात तेज, भा अर्थात प्रकाश। उस तेज में, उस प्रकाश की उपासना में, आराधना में ही रत होने वाला, रमने वाला अर्थात भारत। तेज की, प्रकाश की उपासना की परंपरा टिकी रहे, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। प्रकाश पर्व, आनंद का पर्व कहलाई जाने वाली दीपावली का जनमानस में अद्भुत और अलौकिक आकर्षण है। कृतज्ञता का संस्कार सभी के अंतकरण पर अंकित करने वाला ये लोकप्रिय त्योहार कौटुंबिक सद्भावना और आपसी स्नेह का संवर्धन करता है। अर्थात ये त्योहार आपसी स्नेह बंधन संजोने वाला त्योहार राजाई है। दीपावली आनंद का वर्षाव करने वाला है। अज्ञान मोह के अंधकार से ज्ञानमय प्रकाश की ओर मार्गक्रमण करना जो सिखाती है वो है दीपावली। देव रंगारी रंगारी त्रिभुवन का रंग करी, इस प्रकार सत्य का अनुभव करवाने वाली अर्थात दीपावली। प्रकाश ज्ञान समता एकता मानवता विश्व बंधुत्व के दर्शन जो घड़वाती है वो है दीपावली। दुख एवं दरिद्रता का निर्मूलन कर सुख समृद्धि आरोग्य शांति और संतोष समाधान ये सब मुक्त हस्तों से जो प्रदान करती है वो ही है औदार्यशील दीपावली। दीपावली का त्योहार आश्विन वद्य त्रयोदशी से कार्तिक शुद्ध द्वितीया तक मनाया जाता है। धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, लक्ष्मी पूजन, बलि प्रतिपदा एवं यम द्वितीया अर्थात भैयादूज का इसमें समावेश है। दीपावली का आरंभ होने से पूर्व अर्थात अगले दिन वसुबारस मनाया जाता है। दीपावली ये पावन पर्व और दीपावली के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक दिन हमारे लिए कौन सी नई आनंदमय भेंट देने वाला है ये अब हम समझ लेंगे। दुर्वासा ऋषि के शाप से तीनों लोक श्रीहीन अर्थात लक्ष्मी विहीन हो गए। तब उन लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया और इस समुद्र मंथन से श्री लक्ष्मी देवी सहित 14 रत्न प्राप्त हुए और इनमें अमृत का भी समावेश था। इस समुद्र मंथन से 14 रत्नों में ही कामधेनु और अमृत कुंभ लिए धन्वंतरी देवता भी है। गो माता अर्थात जो इसी कामधेनु का स्वरूप है उनका पूजन हम वसुबारस के दिन करते हैं और अमृत कुंभ लिए धन्वंतरी की जयंती हम धनत्रयोदशी को मनाते हैं। दीपावली के साथ आने वाला पहला दिन अर्थात वसुबारस, इसे ही गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। यह कृतज्ञता का व्रत है। इस दिन गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गोमाता का अनन्य साधारण महत्व है। गोमाता पवित्रता की प्रतीक है, गोमाता पूजनीय है। प्राचीन काल से ही गोमाता की पूजा की जाती है। भारत में गाय आपके द्वार पर होना ये धन संपदा का, समृद्धि का लक्षण है, और इसीलिए गाय का उल्लेख गोधन के रूप में भी किया जाता है। आरोग्य, बल एवं ऐश्वर्य के लिए गाय अत्यंत उपयुक्त है। गाय का महत्व बताते समय संत तुकाराम महाराज कहते हैं, जिसके घर गाय वहां विट्ठल के पाए, अर्थात जिसके घर गाय होती है उसके घर में सुख समृद्धि के रूप में भगवान वास करते हैं। राजा दिलीप और साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने भी गाय की अनन्य भाव से सेवा और पूजा की थी। गोपालन के कारण ही भगवान श्री कृष्ण गोपाल हुए, और श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है, इसीलिए श्री कृष्ण का लोक भी गोलोक है। वसु बारस के दिन पृथ्वी लोक की सभी गौओं को विष्णु लोक की गौओं का स्वरूप प्राप्त होता है, अर्थात उस गाय की नामकरण विधि होती है और उसे देवत्व प्राप्त होता है, ऐसा अपने शास्त्रों में कहा गया है। गाय को ही कामधेनु कहते हैं, और कामधेनु समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है। हम सभी साधना करते हैं, साधना और ईश्वर प्राप्ति ही हमारी प्रधानता है, और यही हमारे जीवन का ध्येय है। ईश्वर प्राप्ति की इस सर्वोच्च आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति हेतु हम सभी कामधेनु से, गोमाता से, आर्तता से प्रार्थना करेंगे, और उसे ये एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी है, ईश्वर प्राप्ति सर्वोच्च आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति हो। वसु बारस का अगला दिन अर्थात धन त्रयोदशी, आयुर्वेद के प्रवर्तक एवं वैद्यों के देवता धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई वो दिन है धन त्रयोदशी, और इसीलिए ये दिन धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है। समुद्र मंथन से अमृत से भरा हुआ शुभ्र कलश लेकर धन्वंतरी देवता बाहर आए। इन्होंने ही वनस्पतियों के औषधीय गुणधर्म से परिचित करवाया, उसी से ही आयुर्वेद का जन्म हुआ। इसीलिए इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाती है। इस धन त्रयोदशी के उपलक्ष्य में साक्षात धन्वंतरी देवता हम सभी पर कृपा वर्षाव करने के लिए आ रहे हैं। हम सभी इस देवता तत्व का भरपूर लाभ लेंगे। देवताओं के वैद्य धन्वंतरी देवता अर्थात आरोग्य देने वाले देवता। साधना करने के लिए हमारी देह एक उत्तम माध्यम है जो भगवान ने प्रदान किया है। यदि ये देह रूपी माध्यम दुर्बल होगा, रोगों से ग्रस्त होगा, तो हम साधना कैसे कर पाएंगे। इसीलिए देह को आरोग्य रूपी धन संपदा प्रदान करने के लिए, देह को निरोगी रखने के लिए धन्वंतरी देवता के कृपाशीर्वाद की अत्यंत आवश्यकता है। वसु बारस के दिन साक्षात कामधेनु हमारी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूर्ति हेतु अवतरित होने वाली है, और उसी इच्छा पूर्ति के लिए निरोगी जीवन देने के लिए साक्षात धन्वंतरी देवता अवतरित होने वाले हैं। साधना के लिए देह मर्यादा को लांघकर भगवान की दुर्लभ सौगात अर्थात इस देह को साधना में जोग पाए, इसलिए आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य प्रदान करने हेतु हम साक्षात धन्वंतरी देवता से प्रार्थना करेंगे। वसु बारस, धन त्रयोदशी और फिर आती है नरक चतुर्दशी। अश्विन वद्य चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी कहते हैं। नरकासुर नामक क्रूर राक्षस था। उसके अंतपुर में 16,000 महिलाएं बंदीवास में थी। पृथ्वी के समस्त राजाओं पर वो बहुत अत्याचार करता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर उसके बंदीवास से 16,000 महिलाओं को मुक्त किया और इस आनंद के उपलक्ष्य में लोगों ने घर घर दीप जलाए, रंगोलियां बनाई, आनंदोत्सव मनाया गया, मिष्ठान्न बनाए और एक दूसरे को बांटे। उस दिन से नरक चतुर्दशी के दिन दीपोत्सव मनाने की प्रथा आरंभ हुई। नरक चतुर्दशी के दिन लोग तड़के सवेरे उठते हैं, सभी ओर दीप जलाते हैं, तेल उपटन लगाकर मंगल स्नान करते हैं। नरकासुर के वध के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए हम नरक चतुर्दशी तो मनाते हैं, परंतु अपने अंतस्थ दोष अहम रूपी नरकासुर के कारण हमें नरक यातना ही भोगनी होती है। ये दोष अहम रूपी नरकासुर अपने जीवन से आनंद ही छीन लेता है, हमें आनंद से वंचित रखता है। अर्थात ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के कारण साधना के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ। जो देह प्राप्त हुई वो निरोगी है, परंतु मन अशुद्ध है तो ईश्वर प्राप्ति का ध्येय कैसे साध्य कर सकते हैं? इसीलिए देह के साथ मन भी शुद्ध एवं निरोगी करने के लिए साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा अवतरित होने वाले हैं। हम सभी अपने मन को उस दोष अहम रूपी विकार रूपी नरकासुर की कैद से छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण परमात्मा को आर्तता से पुकारेंगे। देह सहित मन से भी परिशुद्ध होकर हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। देह तथा मन परिशुद्ध हुआ तो उसमें ईश्वरीय गुणों की अर्थात सद्गुणों की निर्मिति होना भी आवश्यक है, तो ही ईश्वर प्राप्ति होगी। फिर इसके लिए भगवान ने कौन सी लीला की, ये हम जानेंगे। नरक चतुर्दशी के उपरांत आता है लक्ष्मी पूजन का दिन। सभी धनलक्ष्मी की पूजा करने के लिए उत्सुक होते हैं। उन्हीं देवी महालक्ष्मी की महिमा अब हम देखेंगे। श्री लक्ष्मी देवी किस पर प्रसन्न होती है? लक्ष्मी पूजन के समय श्री लक्ष्मी देवी से क्या मांगेंगे, इसका पुनः आज अवलोकन करेंगे। आश्विन अमावस्या दीपावली का एक महत्वपूर्ण दिन होता है। सामान्यतः अमावस्या का ये दिन अशुभ माना जाता है, परंतु दीपावली के काल में अमावस्या अर्थात आश्विन अमावस्या कोजागरी पूर्णिमा समान ही कल्याणकारी और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली होती है। इस दिन श्री लक्ष्मी पूजन, अलक्ष्मी निसारण इत्यादि धार्मिक विधियां की जाती है। धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस अमावस्या की संध्या पर श्री लक्ष्मी देवी का आगमन सद्गृहस्थों के घर होता है। घर को पूर्णता स्वच्छ शुद्ध और सुशोभित कर दीपावली मनाने से श्री महालक्ष्मी देवी प्रसन्न होती है और वहां सदा के लिए वास करना सुनिश्चित करती है। इसीलिए इस दिन श्री लक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं और दीप भी जलाते हैं। इस संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, अब हम उसे सुनेंगे। एक बार देवराज इंद्र और वरुण देवता सवेरे विहार करने निकले। विहार करते करते वे एक नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्हें देवर्षि नारद दिखाई दिए। देवर्षि नारद ने नदी में स्नान किया और मौन धारण कर सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया। इतने में ही भगवान सूर्य नारायण की कोमल किरणें नदी के जल में पड़ने लगी। उन कोमल सूर्य किरणों के प्रकाश में एक दैदीप्यमान कमल दिखाई दिया और उस कमल के ऊपरी भाग में एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया। देवराज इंद्र और देवर्षि नारद ने उस प्रकाश पुंज का अत्यंत बारीकी से निरीक्षण किया तो उसमें माता लक्ष्मी प्रकट हो गई। दोनों ने माता लक्ष्मी को विनम्रता से प्रणाम कर पूछा, हे माते, आप समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, सर्वत्र आपकी पूजा अर्चना होती है, परंतु हे मातेश्वरी, आप ही बताए कि आप किस पर प्रसन्न होती है, आप किसके घर में स्थिर हो जाती है और किन घरों से आप निकल जाती है, उनका परित्याग कर देती है। आप धन संपदा से किसे मोहित कर संसार के जाल में भटका देती है और किसे मानव जीवन की खरी संपदा अर्थात भगवान नारायण की प्राप्ति करवाती है। देवी लक्ष्मी ने कहा, देवर्षि नारद और देवेंद्र, तुम दोनों ने मनुष्य के कल्याण हेतु मानव समाज के लिए हितकारी प्रश्न पूछा है, इसलिए सुनो। समझदार लोग काम धंधा कर मुझे प्राप्त करते हैं। उन्हें जो धन प्राप्त होता है उससे वे दान धर्म करते हैं और इसलिए उनकी धन संपदा द्विगुणित होती है, उसमें वृद्धि होती है। मिले हुए धन का उपयोग चरितार्थ के लिए जितना आवश्यक है उतना ही खर्च कर वे मेरा उपयोग सत्कर्म करने के लिए करते हैं और इससे भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न होते हैं। सत्य बोलने वाले, अपना वचन कभी न तोड़ने वाले पुरुषार्थी, कर्तव्य पालन में दक्ष, अकारण किसी को भी दंड न देने वाले, जहां उद्योग साहस धैर्य और बुद्धि का विकास होता है, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न होते हैं, वही मेरा वास है। सरल स्वभाव के सुदृढ़ भक्ति करने वाले, मृदुभाषी, विनम्रता, विवेक, तत्परता इत्यादि सद्गुण जिस घर के लोगों में है वहां मैं वास करती हूँ। जो भगवत भक्त सत्य वचनी ईश्वर को जो भाए ऐसा आचरण करने वाला और जिसकी प्रत्येक कृति से औरों को आनंद मिलता हो, ऐसे लोगों के घर रहना मुझे अच्छा लगता है। हे देवेंद्र, जो अहंकार रहित है उस पर मैं प्रसन्न होकर उसके जीवन में भाग्य लक्ष्मी, सुखद लक्ष्मी, करुणा लक्ष्मी और औदार्य लक्ष्मी के रूप में मैं विराजती हूँ। देवर्षि नारद, देवराज इंद्र और श्री महालक्ष्मी के इस संवाद से देवी लक्ष्मी ने स्वयं अपने मुख से स्पष्ट बताया है कि उनका वास कहाँ होता है। देवी लक्ष्मी ने भक्त प्रह्लाद एवं राजा बलि से भी कहा था कि जहाँ तेज, धर्म, सत्य, व्रत, बल, शील, दान, तपस्या, पराक्रम इत्यादि सद्गुण होते हैं वहाँ रहना मुझे अच्छा लगता है। अपने घर में लक्ष्मी का नित्य वास रहे, इसलिए प्रत्येक स्त्री पुरुष को सद्गुणों से विभूषित ही होना चाहिए। यदि देवी लक्ष्मी हमारे पास नहीं तो समझ ले कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, न ही बल, न ही सत्व, न ही धैर्य, न ही शक्ति और न ही बुद्धि। वास्तव में यदि देवी लक्ष्मी न हो तो स्थिति कितनी बिकट होगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अर्थात जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सब कुछ है, जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। कारण श्री लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, धान्य संपदा, सुख संपदा, गुण संपदा और ईश संपदा अर्थात ईश्वर की कृपा। देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए देवताओं को समुद्र मंथन करना पड़ा। वही श्री लक्ष्मी माता इस कलयुग के कठिन काल में भी कितनी सहजता से हमारे पास है। वे बल रूप में है, वे मनोबल के रूप में है, बुद्धि रूप में है, ऊर्जा रूप और धन धान्य रूप में भी है। जीवन में उनका ये अनमोल योगदान जानने के पश्चात हमें उनके प्रति कितना कृतज्ञ रहना चाहिए। इस बार लक्ष्मी पूजन करते समय हम ये सभी सूत्र ध्यान में रखेंगे। देवी महालक्ष्मी की कृपा संपादन करने के लिए, उनका बल, उनकी ऊर्जा अनुभव करने के लिए देवी महालक्ष्मी को संपूर्ण शरणागति से प्रार्थना करेंगे। समुद्र मंथन से निर्माण हुई महालक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम सद्गुण रूपी दीपकों से अंतरंग को सजाएंगे। हम सभी अपने अंतर में ये अंकित करेंगे। इस बार लक्ष्मी पूजन करते समय देवी महालक्ष्मी की कृपा संपादन करने के लिए, उनका बल, उनकी ऊर्जा अनुभव करने के लिए संपूर्ण शरणागति से देवी महालक्ष्मी को प्रार्थना करेंगे। और समुद्र मंथन से निर्माण हुई महालक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम सद्गुण रूपी दीपकों से अंतरंग को सजाएंगे। माता के नाम का अर्थ भी अत्यंत सुंदर है। लक्ष्मी, लक्ष्य अधिक मी अर्थात लक्ष्मी, जो लक्ष्य तक लेकर जाती है अर्थात ध्येय तक लेकर जाती है वे है लक्ष्मी। हमें अपने ईश्वर प्राप्ति रूपी ध्येय तक पहुंचाने के लिए ही देवी महालक्ष्मी अब अवतरित होने वाली है। हम सभी ध्येय प्राप्ति के लिए उनकी आर्तता से प्रार्थना करेंगे। अपने अंतर में उनका भक्तिपूर्ण पूजन कर उनके कृपाशीर्वाद की याचना करेंगे। आश्विन अमावस्या को दीपमालाओं की सजावट की जाती है। इस दिन लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी स्वर्ग से गरुड़ पर बैठकर पृथ्वी पर विचरण करती है। जहाँ प्रकाश दिखाई देता है वहाँ अलक्ष्मी अर्थात दरिद्रा देवी प्रवेश नहीं करती। जहाँ अंधकार दिखाई देता है वहाँ दरिद्रा देवी प्रवेश कर हमेशा के लिए वास करती है। जहाँ प्रकाश दिखाई देता है वहाँ माता लक्ष्मी प्रवेश कर सदा के लिए वास्तव्य करती है। और इसलिए इस दिन अपने घर आंगन की स्वच्छता कर घर में दीप जलाकर दीपोत्सव मनाना चाहिए। इससे श्री लक्ष्मी माता अपने घर में स्थिर होती है। श्री लक्ष्मी देवी के आगमन के लिए अलक्ष्मी का निस्सारण किया जाता है। अलक्ष्मी अर्थात दीन दरिद्रता और संकट। निस्सारण करने का अर्थ है बाहर निकलना। श्री लक्ष्मी पूजन के दिन नई झाड़ू की खरीदी कर उसे लक्ष्मी मानकर उसका पूजन करते हैं। उसकी सहायता से मध्य रात्रि में घर का कचरा निकालकर उसे सूप में भरकर फेंकते हैं। ये कचरा अलक्ष्मी का प्रतीक है और उसे बाहर फेंका जाता है। हम में गुण निर्माण हुए, परंतु उन गुणों को महत्व हमारे दोष नष्ट होने पर ही प्राप्त होता है। हमारे विकार, हमारे दोष अहम और वो प्रत्येक विचार जो हमें भगवान से दूर ले जाता है, इस विकार रूपी अलक्ष्मी का निस्सारण अपने अंतर से करने के लिए हम सभी अत्यंत लगन से प्रयत्न करेंगे। तदुपरांत ही देवी महालक्ष्मी केवल अपने घर में, अपनी वास्तु में ही नहीं, अपितु अपने हृदय मंदिर में भी आने वाली है। साक्षात देवी महालक्ष्मी का प्रवेश अपने हृदय मंदिर में होने के लिए हम सभी अपनी भक्ति बढ़ाएंगे और उसके बल पर दोष अहम पर विजय प्राप्त कर उनकी कृपा संपादन करेंगे। यदि हमें दीपावली का आंतरिक आनंद प्राप्त करना है तो स्वयं में जो अवगुण रूपी अलक्ष्मी है उसे दूर करने का निश्चय करेंगे और उसे दूर करने का निश्चय कर सद्गुण रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो ऐसी हम देवी से भावपूर्ण प्रार्थना करेंगे। अभी हम कुबेर पूजन का महत्व जान के लेंगे। इस दिन लक्ष्मी सहित कुबेर का भी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी धन की देवी है तो कुबेर संपत्ति के कोषाध्यक्ष है, अर्थात धन को संभालने वाले हैं। कुछ लोग धन प्राप्ति की कला तो साध्य करते हैं, पर उसे संग्रह करने की कला ज्ञात न होने से उनसे अनावश्यक खर्च हो जाता है और इससे परिणाम स्वरूप धन शेष नहीं रहता। सारांश में जितना महत्व धन प्राप्त करने का है उससे भी अधिक महत्व उसे संभालना और उसे यथोचित भगवत भक्ति के लिए खर्च करने का है। धन कैसे संभालना चाहिए ये कुबेर सिखाते हैं। कुबेर तो धनाधिपति है, इसलिए इस पूजा के लिए लक्ष्मी और कुबेर का भी एक साथ उल्लेख आया है। ये सूत्र हमारी साधना के संदर्भ में भी लागू है। भगवान ने हमें जीवन में बहुत कुछ दिया है, हमारे बिना मांगे ही अनेक बातें हमें अत्यंत सहजता से प्रदान की है, जैसे कि साक्षात गुरुदेव। गुरुदेव हमें मिले हैं, अर्थात हमें जीवन में उत्तम उत्तम ऐसा सब कुछ मिला है। उनके आगमन से हमारे जीवन में आध्यात्मिक संपदा का लाभ हुआ है। उन्होंने हमें मोक्ष तक ले जाने वाली गुरु कृपा योग साधना सिखाई, जीवन उद्धार करने वाली स्वभाव दोष और अहम निर्मूलन प्रक्रिया सिखाई। हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण आनंदमय बनाने के लिए श्री गुरु ने हमें क्या नहीं दिया, उन्होंने हमें सब कुछ दिया है और अब उसे संभालना, वो सब कृतज्ञता भाव से टिकाना भी अत्यंत आवश्यक है। गुरुदेव जी ने हमें बहुत कुछ दिया है, भरपूर दिया है। उन सभी का मोल समझकर हमें सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। हमारे प्रयत्न अत्यंत अल्प है या यूं कहे कि न के बराबर है, तब भी श्री गुरु ने अनेकों को आध्यात्मिक प्रगति रूपी अनमोल भेंट दी है और अनेक जन प्रगति पथ पे है। गुरु की इस अपरंपार कृपा का मोल समझ लेंगे। हमारे जीवन में श्री गुरु द्वारा प्रदान किए गए विविध अनमोल एवं दैवीय क्षण मोती हम अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। हम इसके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। ये अनमोल क्षण मोती गुरुदेव जी की ये भेंट संभाल कर कैसे रखें, ये सिखाने के लिए ही साक्षात कुबेर देवता अवतरित होने वाले हैं। हम सभी भगवान कुबेर की शरण जाकर उसके लिए आरती याचना करेंगे। गुरुदेव जी ने जो हमें दिया है तो उस सभी का मोल समझकर हमें सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। इसके लिए भगवान कुबेर की शरण जाकर आरती याचना करेंगे। लक्ष्मी पूजन के उपरांत अब भगवान की कौन सी लीला है ये हम जानेंगे। लक्ष्मी पूजन के उपरांत कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा अर्थात बलि प्रतिपदा ये आती है। ये दिन विक्रम संवत्सर का वर्षारंभ दिन माना जाता है और इसीलिए इस दिन को दिवाली पाड़वा भी कहते हैं। व्यापारी इस दिन से नया वर्षारंभ करते हैं। वर्ष के 3.5 शुभ मुहूर्तों में से आधा मुहूर्त इस दिन का होता है। अति दानशूर वृत्ति के कारण दैत्यों की भी सभी मांगे पूरी करने का दोष बलि राजा को लगा था, इसलिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उन्हें पाताल भेज दिया और वो भी यही दिन था। इस माध्यम से भगवान श्री विष्णु ने हमें ये अनमोल सीख दी है कि किसी भी गुण के अतिरेक से भी दोष ही है। बलि ने राक्षस कुल में जन्म लेकर भी अपने पुण्य कर्मों से भगवान वामन की कृपा संपादन की। मनुष्य अज्ञानवश प्रारंभ से ही अयोग्य कर्म करता है, परंतु ईश्वरीय कृपा और ज्ञान के कारण वो देवत्व भी प्राप्त कर सकता है। बलि असुर होते हुए भी अपनी उदारता के कारण और अंत में सर्वस्व अर्पण करने से ईश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया और उसके जीवन की काया पलट कर उसका उद्धार किया। बलि राजा के उदाहरण से हम सब सीखेंगे, हम सभी ईश्वर के प्रति शरणागति बढ़ाएंगे। हमारे पास सब कुछ हो तब भी अहंकार के कारण मनुष्य सब कुछ गंवा देता है, इसलिए उत्तम उपाय है शरणागति। शरणागति के कारण अहंकार नष्ट होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। करण करावन हर भगवान ही है, इसका हम मन बुद्धि को भान करवाएंगे। हम अपनी देह मन बुद्धि चित्त सहित सदैव भगवान के प्रति शरणागत रहेंगे। देह सहित मन बुद्धि सर्वस्व ही हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। भगवान ने आने वाली दीपावली के उपलक्ष्य में ये दिव्य प्रकाशोत्सव आनंदोत्सव मनाने के लिए आज के भक्ति सत्संग से बहुत सुंदर दिशा दर्शन किया है। ये दिव्य सूत्र आचरण में लाएंगे और इसके लिए हम सभी अब भगवान की ही शरण जाएंगे। आज के सत्संग में भगवान ने हमें आध्यात्मिक दीपावली का जो भावार्थ बताया है उसका पुनः एक बार संक्षेप में अवलोकन करेंगे और वे सूत्र अपने अंतर मन पर अंकित करेंगे। दीपावली के साथ ही आने वाला पहला दिन है वसुबारस, इसी को गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। गाय अर्थात सर्व इच्छा पूर्ति करने वाली कामधेनु, ईश्वर प्राप्ति यह हमारी सर्वोच्च आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति हेतु हम सभी इस वसुबारस को कामधेनु अर्थात गो माता को आर्तता से पुकारेंगे। वसुबारस के दिन साक्षात कामधेनु हमारी ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूर्ति के लिए अवतरित होने वाली है। इस ईश्वर प्राप्ति की इच्छा पूर्ति हेतु माध्यम बने आरोग्यपूर्ण जीवन के लिए धन त्रयोदशी को साक्षात धन्वंतरी देवता अवतरित होने वाले हैं। साधना के लिए देह मर्यादा लांघकर हम देह को साधना में झोंक सके इसलिए आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य प्रदान करने के लिए हम साक्षात धन्वंतरी देवता को पुकारेंगे। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा के कारण साधना के लिए हमें जीवन प्राप्त हुआ। जो देह प्राप्त हुई वो भगवान धन्वंतरी की कृपा से निरोगी होगी, परंतु यदि मन अशुद्ध हो तो ईश्वर प्राप्ति का देह कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए देह सहित मन भी शुद्ध और निरोगी रखने के लिए नरक चतुर्दशी के दिन साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा अवतरित होंगे। हम सभी अपने मन को उस दोष अहम रूपी विकार रूपी नरकासुर के बंधनों से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आर्तता से पुकारेंगे। देह सहित मन से भी परिशुद्ध होकर हम इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करेंगे। देह और मन के परिशुद्ध होने पर उसमें ईश्वरीय गुणों की अर्थात सद्गुणों की निर्मिति होना आवश्यक है, तभी ईश्वर प्राप्ति होगी। इन सद्गुणों के रूप में जो वास्तव्य करती है वे है महालक्ष्मी। जहाँ सद्गुण है वही वे लक्ष्मी वास करती है, इसलिए हम में विद्यमान सद्गुण बढ़ाने के लिए लक्ष्मी पूजन के दिन देवी महालक्ष्मी को आर्तता से प्रार्थना करेंगे, उनका पूजन कर उनकी कृपा संपादन करेंगे। लक्ष्मी धन की देवी है और कुबेर संपत्ति के कोषाध्यक्ष है। प्राप्त हुआ धन कैसे संभालना चाहिए ये सिखाने के लिए कुबेर देवता को हम आर्तता से पुकारेंगे। श्री गुरु द्वारा अपने जीवन में दिए हुए विविध अनमोल एवं दैवीय क्षणमूर्ति ये दिव्य आध्यात्मिक धन हम अपने हृदय में अत्यंत संभाल कर रखेंगे। ये अनमोल क्षणमूर्ति गुरुदेव द्वारा दी हुई भेंट कैसे संभाल कर रखनी है ये सिखाने के लिए साक्षात कुबेर देवता अवतरित होने वाले हैं। हम सभी कुबेर देवता की शरण जाएंगे और उसके लिए आर्त याचना करेंगे। हमारे पास भले ही सब कुछ हो तब भी बिना शरणागति के सब व्यर्थ है। शरणागति के कारण ही अहंकार नष्ट होकर भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस बलि प्रतिपदा के उपलक्ष्य में हम बलि राजा समान अपनी देह मन बुद्धि चित्त इन सभी के साथ भगवान की शरण जाएंगे। देह सहित मन बुद्धि सर्वस्व ही हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करेंगे। इस प्रकार दीपावली के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक दिन का आध्यात्मिक भावार्थ समझकर हम दीपावली का आध्यात्मिक आनंद लेंगे। इस दीपावली के ये 5 दिन प्रतिदिन अगले अगले आध्यात्मिक स्तर पर लेकर जाने वाले हैं, हम उसका भरपूर लाभ लेंगे। दीपावली पर बाह्य दीपों के दीपोत्सव सहित आंतरिक गुण दीपों से भी अपने मन मंदिर को प्रकाशित करेंगे। अपने मन रूपी गर्भगृह की भगवत मूर्ति का दिव्य रूप उस दीप प्रकाश में आलोकित करेंगे, उस मूर्ति की आराधना करेंगे। इस प्रकार इस दीपावली पर आध्यात्मिक दीपोत्सव आध्यात्मिक प्रकाशोत्सव और आध्यात्मिक आनंदोत्सव मनाएंगे। आने वाली दीपावली के उपलक्ष्य में साक्षात देवी परब्रह्म स्वरूपिणी महालक्ष्मी की आराधना करने का दिव्य अवसर हमें प्राप्त हुआ है। भक्ति सत्संग रूपी भक्ति यज्ञ से हमें उसके लिए बहुत सुंदर दिशा दर्शन मिला है। दीपावली के दीपोत्सव से पूर्व चैतन्य से मन मंदिर के गर्भगृह को प्रकाशित कर पंच प्राणों की ज्योति से अब हम देवी माँ की आरती उतारेंगे। अलक्ष्मी हरने वाली महालक्ष्मी का स्तुतिगान करेंगे। दीपोत्सव से पूर्व चैतन्य से मन मंदिर के गर्भगृह को प्रकाशित करेंगे। पंच प्राणों की ज्योति से देवी माँ की आरती उतारेंगे। हे महालक्ष्मी जगत जननी आपकी जय जयकार हो। हे विश्वरूपिणी माते चराचर में आपका वास है। संपूर्ण ब्रह्मांड आपके दिव्य रूप से व्याप्त है। हे विश्वव्यापक रूपिणी महालक्ष्मी आपकी जय जयकार हो। सर्व देवादिक ऋषि मुनि जिनका पूजन वंदन करते हैं ऐसी है महालक्ष्मी आपकी जय जयकार हो। भक्तों पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने वाली हे वरदायिनी आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। हे पाप विनाशिनी माते जो भक्त मोह माया में उलझकर आपको भूल गया है उन्हें भी योग्य मार्ग दिखाने वाली आप ही है। उन पर भी कृपा करने वाली आप करुणाकारिणी है। हे माते आवश्यकतानुसार विविध रूप धारण कर अपने भक्त का उद्धार करने वाली आप ही है माते। हे पाप विनाशिनी माते तारणहारिणी महालक्ष्मी माते आपकी जय जयकार हो। हे कमलवासिनी माता आपके चरण कमलों में सतत हमें शरणागत रखे। हे माते आपके श्री चरणों में हमें ऐसे लीन रखे माते कि हमें केवल और केवल आपका ही स्मरण रहे। हे कल्याणकारिणी हे सर्वेश्वरी आपकी जय जयकार हो। अलक्ष्मी को हरने वाली हे देवी लक्ष्मी हे पद्मे हे शुभदे हम पर कृपा करें। हम में स्थित दोष अहम रूपी विकार रूपी अलक्ष्मी हरकर आप ही परम पवित्र शुद्ध सद्गुणों के रूप में हम में निवास करें। क्षीर सागर में रहकर विष्णु चरण सहित सेवा में तल्लीन हे महालक्ष्मी माता आपका वरदस्त सदैव हमारे सिर पर रहने दे। हे माते हमारे लिए गुरु भक्ति और साधना ही सुख समृद्धि है इसलिए आप हमें वही प्रदान करें। हमारे अंतर में मन मंदिर में हमारे हृदय मंदिर में भक्ति ही प्रदान करें माते। मुक्ति और समर्पण इसका हर पल हमें भान रहने दे। हे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी आपकी अखंड अखंड जय जयकार हो। आपकी अखंड जय जयकार हो। हे कमलवासिनी माता हे पाप विनाशिनी माते हे महालक्ष्मी हे विश्वरूपिणी माते हे जगत जननी आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। हे विष्णु प्रिया महालक्ष्मी आपकी अखंड अखंड जय जयकार हो। भगवान की कृपा से ये दिव्य भक्ति सत्संग संपन्न हुआ इसलिए हम भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।